सुग्रीव और लक्ष्मण सहित श्री राम बड़े कुशल पूर्वक अपने शत्रु श्री रावण को मारकर आपके पास मुझे विजय का संदेश सुनाने के लिए भेजे हैं। भगवान श्री राम बंदरों सहित विभीषण सहित आपका कुशल क्षेम पूछे हैं और आपका कुशल क्षेम सुनना चाहते हैं। मैं इससे बढ़कर आपको और क्या समाचार सुना सकता हूं कि आज संपूर्ण त्रिलोकी में राम से बढ़कर कोई योद्धा नहीं है। रावण को मारकर राम जी ने ये बात लंका में सिद्ध कर दी है। जितने बानर किष्किंधा से यहां आए थे वे सब बानर बड़े स्वस्थ हैं। रावण मारा गया, लंका आज विभीषण के वश में हो गई है और इस युद्ध के अंदर जो भगवान ने प्रतिज्ञा की थी वो प्रतिज्ञा पूरी कर चुके हैं। समुद्र के ऊपर जो पुल बनाया गया था वो कार्य आज सफल हो गया है। भगवान ने प्रतिज्ञा की थी कि इस लंका के ऊपर विभीषण का राज्य निश्चित करूंगा, ये मेरी प्रतिज्ञा है। इसलिए अब आपके मन में ये भावना नहीं होनी चाहिए कि मैं किसी शत्रु की नगरी में बैठी हूं। अब इस अशोक वाटिका को आप अपनी माने, अपने घर में बैठे हैं। लंका अब अपनी है, आपकी है, और अब आप अपने मन से सब प्रकार का भीतर का भय निकाल दीजिए, संकोच निकाल दीजिए। चंद्रमा के मुख के समान सुंदर मुख वाली सीता उस समय कुछ नहीं बोली, हनुमान को एकटक देखने लगी। सीता जी के टप टप आंख से आंसू आने लगे, उनका गला भर गया। वो कुछ बोलना चाहते कुछ नहीं बोल पाए। हनुमान जी ने ऐसे होठ तो चल रहे लेकिन बोला नहीं जा रहा है, ऐसे सीता जी से हाथ जोड़ते हुए बड़ी नम्रता से पूछा, हे देवी आप बोलती नहीं है, एकटक मुझे देखती हैं, क्या बात है? कुछ आप अपनी तरफ से ऐसा संदेश दीजिए जो आपके वियोग में जलने वाले श्री राम के हृदय में शीतलता प्रदान करे। हनुमान जी की वाणी सुनकर सीता और ज्यादा रोने लग गई और मुस्कुराती भी हैं, आंख से आंसू भी आते हैं और वाणी बड़ी गदगद हो गई। बहुत प्रिय समाचार सुनकर के सीता एक क्षण के लिए सब कुछ भूल गई और अत्यंत 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 हर्ष में डूबकर वो कहने लगी कि हे हनुमान, इससे बढ़कर मैं और क्या समाचार सुन सकती थी, उसकी खुशी मेरे हृदय में समाई नहीं, मेरा हृदय उस खुशी में डूब गया, इस कारण से शब्द बोलने की जगह मेरे कलेजे में नहीं रही, स्वर में भी नहीं रही, खुशी खुशी छा गई। मैं तुम्हें क्या दूं, जो खुशी तुमने मुझे दी है उसके बदले में मैं तुम्हें क्या दे सकती हूं? हे सौम्य, इस पृथ्वी पर इससे बढ़कर और कोई दूसरा समाचार मेरे लिए नहीं है। मैं क्या दूं, मेरे पास क्या है? सोना देऊं, मोती देऊं, लोक देऊं, परलोक देऊं, रत्न देऊं, सब फीका मालूम देता है। मेरे प्राणनाथ विजयी हो गए, मेरे प्राणनाथ ने मेरी विपत्ति को समझ करके उन्होंने रावण को समाप्त किया। तीनों लोकों में आज उन्होंने अपना विजय का झंडा गाड़ दिया। इससे बढ़कर और मैं क्या विशेष समाचार सुन सकती हूं? हनुमान जी ने उत्तर देते हुए कहा कि हे जनक नंदिनी, हे अपने स्वामी की विजय की आकांक्षा में डूबने वाली सीताए, आप अपने स्वामी के हित में डूबी रहने वाली हो, क्या सुंदर आपने बात कही है। कितना स्नेह और कितना प्रेम आपकी वाणी में भरा हुआ है। आपने अपने वाणी का सब सार मुझे कह दिया। बड़े बड़े रत्नों का हमको सागर मिल जाए, देवराज्य भी मिल जाए, तो भी इसके सामने आपने किसी को भी आदर नहीं दिया। तो वही तो भाव मेरे अंदर है माताजी। भगवान श्री राम का इतना ऊंचा राज्य, इतना ऊंचा यश हुआ है, ये यश कोई मामूली नहीं है। इससे बढ़कर और क्या समाचार हो सकते थे। तो मुझे रत्नों की आवश्यकता नहीं, मुझे सोने की आवश्यकता नहीं, मुझे किसी और लोक की आवश्यकता नहीं। जिसकी आवश्यकता थी वो मुझे मिल गई। आवश्यकता थी श्री राम विजयी बने, आवश्यकता थी कि आपके चित्त से ये कष्ट दूर हो, ये दोनों काम हो गए, मुझे मिलने वाली चीज मिल गई। अब आप जो भी चीज देंगे वो मिली हुई चीज से हल्की चीज देंगे। सीता जी इस बात को सुनकर के बड़ी प्रसन्न होकर कहने लगी, हनुमान तुम भाई हर दृष्टि में बड़े योग्य हो, हनुमान तुम बड़े सुलक्षणीय हो, हनुमान तुम में बड़ा माधुर्य गुण है, हनुमान तुम बहुत अच्छी बुद्धि वाले हो, ऐसी तुम बात बोलते हो। हे पवन पुत्र हनुमान, तुम वास्तव में बहुत श्लाघनीय हो, प्रशंसनीय हो। तुम्हारा बल, तुम्हारा शौर्य, तुम्हारा ज्ञान, ये सब बड़ा प्रशंसनीय है। तुम्हारा तेज, तुम्हारी क्षमा, तुम्हारा धैर्य, तुम्हारी स्थिरता और तुम्हारा विनय भाव, इन गुणों ने हमें आकृष्ट कर लिया है हनुमान। और भी तुम्हारे अंदर बहुत से गुण हैं और हनुमान तुम में गुण सदाई सदा आते ही रहे, और मैं क्या कह सकती हूं। हनुमान जी ने कहा, सीता जी, माता जी, एक बात की आप मुझे आज्ञा दीजिए। ये जो यहां तरह तरह की राक्षसियां बैठी हैं, जो कोई जटा फुलाए हुए, कोई मोटी नाक किए हुए, कोई डराने वाली आंख किए हुए, इन्होंने आपको बहुत कष्ट दिया है। इस अशोक वाटिका में सबसे ज्यादा कष्ट आपको इन राक्षसियों ने दिया है और इन विकृत मुख वाली राक्षसियों को महाराज आप आज्ञा दीजिए, मैं एक एक को इनकी चोटियां बांध बांध करके अशोक वाटिका में ऊपर ऊंचे से ऊंचे वृक्ष पर लटका करके और धड़ाम धड़ाम से इनको पटक पटक करके इनको बताऊं कि सीता जी को कष्ट देने का क्या लाभ होता है। इन्होंने आपको बहुत मोटी आंखों से डराया था, इनकी आंखें फोड़ फोड़ के बताऊं कि आंखें निकालने का क्या फल होता है। ये रावण की बहुत आज्ञा मानती थी ना, इसलिए इनके रावण की आज्ञा मानने का फल भी बताऊं। मैं इनको चाहता हूं अनेक प्रकार से इनको थोड़ा कष्ट दिया जाए, इनको पता चले, इनको मुखों से, लातों से और जो है कोहनी से और जो है प्रहार से और दांतों की कटकटाने से ऐसे इनको काट काट करके पता चले, कान काटे इनका, नाक खा जाए इनका और पता चले कि कैसे सीता को कष्ट देने का फल होता है। केस पकड़ पकड़ के सीधे इनके बालों से उखाड़ा जाए, तब पता चलेगा कि सीता के साथ ऐसे व्यवहार करने से क्या फल मिलता है। अनेक प्रकार की युक्तियां हैं इनको दंड देने की, आप आज्ञा दीजिए, मैं एक एक को अभी दंड देना चाहता हूं। सीता जी ने कहा, नहीं हनुमान, ऐसा कभी नहीं करना। ये बिचारी रावण के या नौकरी करके अपना पेट पालती थी, इनका मेरे साथ बैर थोड़ा ही था। ये रावण की नौकरी करने वाली, यदि रावण की नौकरी न करे, मुझे न डराए, मुझे न धमकाए, तो इनकी आजीविका बंद हो जाती है। हे वानर श्रेष्ठ हनुमान, तुमको इन राक्षसियों पर नाराज नहीं होना चाहिए। यह तो कोई मेरा ही दुर्भाग्य था, जितने दिन मुझे दुख भोगना था उतना दिन हमने दुख भोगा है, इन दासियों पर कुपित होने से क्या होगा। देखो अब चाहे तुम इनको कितना ही मारो पीटो, कितना ही कष्ट दो, जो मेरा सौभाग्य लौट आया है वो तो लौट ही आया है, वो तो बिना मारे ही लौट आया, और अब ये मुझे किसी प्रकार से कष्ट देते ही नहीं है। अतएव तुम किसी प्रकार से इनको लेकर तरह तरह की शंकाएं छोड़ दो। ये कोई ऐसी दशा योग की बात थी जो मैंने भोग ली, और ये बिचारी रावण की दासियां हैं, यदि ऐसा नहीं करती तो इनको दासी पद से मुक्त किया जा सकता, मुक्त कर देते तो बड़ी मुश्किल होती। हनुमान, हमने एक पुराणों में बात सुनी है, बहुत सुंदर बात, ध्यान से सुनना, बहुत बढ़िया बात है। वाल्मीकि रामायण में कितनी बढ़िया बात आई है, सावधानी से सुनना कि हमने एक बात सुनी है, पुराणों धर्म संहिता, पुरानी बात, पुराणोक्त बात, धार्मिक बात, सत्य बात हमने सुनी है कि एक बार एक शिकारी व्याघ्र का शिकार करते, रींच ये सिंह का शिकार करते करते दूर जंगल में चला गया। सिंह ने वापस उसका पीछा किया मुड़ करके, शिकारी डर गया, शिकारी तत्काल एक पेड़ पर चढ़ गया, सिंह पेड़ पर नहीं चढ़ सकता, उस वृक्ष के ऊपर एक रींच रहता था। सिंह ने कहा, ए रींच, तुम भी जंगल में रहने वाले, मैं भी जंगल में रहने वाला, ये शिकारी तुम्हारा भी शिकार करता है, मेरा भी शिकार करता है, तुम इसको नीचे पटक दो, मैं इसको अभी मार के खा जाऊंगा, तेरा भी संकट दूर हो जाएगा, मेरा भी संकट दूर हो जाएगा। उस रींच ने कहा कि नहीं वनराज, मैं ऐसा काम नहीं कर सकता, क्यों कि ये मेरी शरण में आया है। तुम्हारी शरण में कहां आया है, ये तो वृक्ष की शरण में आया है। नहीं, मैं भी तो इस वृक्ष के ऊपर हूं, ये मेरे पास आया है, मैं इसे नहीं मार सकता। अच्छी बात है। तो वो रींच वहां पर टहनी के ऊपर यूं पड़ा हुआ था, पड़े पड़े रींच को नींद आ गई। नींद आने के बाद सिंह ने कहा, ए शिकारी, मैं तुमको मारूंगा नहीं, तुम एक काम करो, मुझे जोर से भूख लगी है, तुम इस रींच को धक्का देकर, टहनी से धक्का देकर नीचे गिरा दो, मैं इस रींच को मार लूंगा और भग जाऊंगा, तुम्हारी भी जान बच जाएगी और रींच भी मारा जाएगा। इस समय तुम मेरे और रींच के बीच में बड़े भयभीत हो। शिकारी ने कहा, बात तो तुम्हारी बहुत ठीक है। शिकारी ने उस रींच को धक्का दिया, धक्का देने पर अब रींच का तो अभ्यास था, उसने इससे धक्का दिया, दूसरी टहनी पकड़ ली, उस टहनी पर बैठ गया। सिंह ने कहा, ए रींच, देखा नहीं, तुमने तो इसको आश्रय दिया और ये तुमको मारने के लिए नीचे फेंकने लगा, अब बड़ा मौका है, तुम इसको नीचे फेंक दो और मैं इसे खा जाऊंगा, तुम्हारा और मेरा दोनों का ये कंटक सदा के लिए समाप्त हो जाएगा। रींच ने कहा, नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता। तुम नहीं कर सकते, ये तो देखो तुमको मारने के लिए फेंका है। नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता। उस रींच ने उत्तर दिया, न परह पाप मादत्ते परेशां पाप कर्मणां समयो परिरक्षत परि समयो रक्षितव्यस्तु संतश्चारित्र भूषण। हमारे साथ शत्रु चाहे कोई कितना ही पाप करे, कितना ही अन्याय करे, पर हमको उसके बदले में अन्याय नहीं करना चाहिए, पाप नहीं करना चाहिए। हमको तो हमारे कर्तव्य का पालन करना चाहिए, धर्म का पालन करना चाहिए। संत वही है, साधु वही है, श्रेष्ठ वही है कि जिसका अपना चरित्र है वही उसका आभूषण, चरित्र जिसका सुरक्षित है, जिसके मन में दया है, जिसके मन में संतोष है, जिसके मन में क्षमा है, जिसके मन में उदारता है, वही वास्तव में संसार में श्रेष्ठ पुरुष कहलाता है। चाहे पापी व्यक्ति भी हो, चाहे मारने योग्य व्यक्ति भी हो, तो भी दया से बढ़कर कोई चीज नहीं होती। किसी ने अपराध भी किया हो तो भी उस अपराध, देखो अपराध के बदले दंड देना ये तो बहुत जगह बात मिलेगी, लेकिन अपराध को पी करके और उसको क्षमा कर देना ये यहां विशेष व्यक्तियों का काम होता है। इसलिए हे सिंह, मैं ऐसा काम नहीं कर सकता। सिंह लज्जित हो गया। इसी प्रकार से हे हनुमान, मैं भी किसी प्रकार से इन राक्षसियों को मारने के पक्ष में नहीं हूं, क्योंकि पापी व्यक्ति पाप करेगा वो तो दयनीय है कि उसका पाप ही उसको खा रहा है, तुम और नए ढंग से क्यों खाने जाओ भाई, उसके ऊपर दया करो कि अरे राम ये पाप करके बड़ा भारी संकट में तो यूं ही फंस गया, अब इसके लिए नया संकट पैदा करो कोई जरूरत नहीं है, वो पाप खुद ही उसके लिए संकट हो जाएगा। ये बात सुनकर के हनुमान जी के नेत्रों में जल आ गया और हनुमान जी महाराज कहने लगे, ओहो हे देवी, आप जनक जी की बेटी होने लायक हो, आप दशरथ जी की पुत्र वधू होने लायक हो, आप राम की पत्नी होने लायक हो और कौशल्या जी की पुत्र वधू होने योग्य हो। कितना सुंदर आपने ये क्षमा का हमारे सामने उपदेश दिया है। अब बताइए, मैं श्री राम के पास लौट रहा हूं, उनको जाकर मैं क्या कहूं। सीता जी ने कहा कि दृष्टुम इच्छामि भर्तारं, मैं अपने प्राणनाथ के दर्शन करना चाहती हूं, भक्तवत्सल श्री राम के दर्शन से मुझे बड़ा संतोष होगा। राम जी महाराज ने कहा कि हे सीता जी, पूर्ण चंद्रमा के समान खिला हुआ भगवान का मुख, लक्ष्मण सहित, सुग्रीव सहित, सब बांदरों सहित आप थोड़ी देर में देखेंगे और आपके पास में स्वयं विभीषण जी महाराज आकर आपको ये संदेश देंगे। ये बात सुनकर के हनुमान जी बड़े प्रसन्न होकर सीता जी को प्रणाम करके राम जी के पास लौट आए। सपदि हरिवरस्ततो हनुमान प्रतिवचनम जनकेश्वरात्मजाया कथितम कथयद् यथा क्रमेण त्रिदशवर प्रतिमाय राघवाय। हनुमान जी महाराज सीता जी के संदेश को लेकर भगवान श्री राम के पास आए जहां पर वे विराजमान थे। भगवान श्री राम के पास पहुंचने पर हनुमान जी ने कहा कि हे महाराज, सीता जी तो आपके विजय के समाचार सुनकर के अपने आप को रोक न सके और वो सीता जी तो उस समय गदगद हो गई और उन्होंने कहा है कि आप पुराना प्रेम याद करके आप मुझे जल्दी से जल्दी बुलाइए, मैं आपका स्नेह, आपका आपका आपकी कृपा को देख चुके हूं। ध्यान किया, ध्यान करके और राम जी की आंखों से थोड़ा जल आया, लंबी श्वास खींची, पृथ्वी की ओर बार बार देखा, नीचे सिर किया, सोचते सोचते उन्होंने विभीषण से कहा, विभीषण सीता जी को स्नान कराना, सीता जी को दिव्य अंगराग से अलंकृत करके, दिव्य आभूषणों से अलंकृत करके मेरे पास उपस्थित किया जाना चाहिए, इसमें विलंब न हो। तत्काल विभीषण जी महाराज अंतपुर में गए और वहां की स्त्रियों को उन्होंने आदेश दिया और उस आदेश के अनुसार सीता जी ने सीता जी से कहा गया कि आप दिव्य अंगराग को स्वीकार कीजिए, स्नान कीजिए, दिव्य अंगराग को स्वीकार कीजिए, अच्छे आभूषण पहनिए और आप इस यान में विराजमान होकर अपने प्राणनाथ श्री राम के दर्शन कीजिए। सीता जी ने कहा कि देरी हो जाएगी विभीषण जी, देरी हो जाएगी, मैं तो जल्दी है जिस हालत में दर्शन करना चाहती हूं, बिना स्नान करे ही जाऊंगी। विभीषण ने कहा कि देखो जैसे आदेश दिया है वो आदेश मैंने सुनाया है, मेरे विचार से आपको उनका आदेश मानकर स्नान करके ही जाना चाहिए। सीता जी ने ये बात सुनी, उन्होंने स्नान किया, पति में उनकी बड़ी भक्ति थी, सती साध्वी सीता अलंकृत होकर दिव्य आभूषणों को पहन करके एक बड़ी सुंदर पालकी सजाई हुई थी, उस पालकी में सीता जी को विराजमान किया। सीता जी ने बहुत सुंदर वस्त्र पहन रखे थे, उस पालकी को बहुत से राक्षसों ने चारों तरफ से घेर रखा था, उस पालकी के आगे आगे विभीषण जी महाराज चल रहे थे और सीता जी उसमें विराजमान थी। उस समय में विभीषण जी के मन में बड़ा हर्ष हो रहा था, विभीषण जी महाराज सीता के सामने बड़े नम्र थे और वे तत्काल राम जी के पास आए और राम जी के पास आकर के कहा कि महाराज सीता जी पालकी में आ रही है। उस समय राम जी के मन में रोष पैदा हुआ, राम जी के मन में हर्ष पैदा हुआ, राम जी के मन में दीनता पैदा हुई, तीन भाव आए, क्रोध भी आया, रोष भी आया और दीनता भी आई और हर्ष भी हुआ, तीनों भाव हुए। और सीता जी को ज्यों ज्यों आगे लाया जा रहा था उस समय में राम जी ने कहा कि हे राक्षस राज विभीषण सुनो, सीता को मेरे पास जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी उपस्थित करना चाहिए। विभीषण जी ने कहा कि अभी उपस्थित करते हैं महाराज, राक्षसों से कहा जल्दी लाओ पालकी, जल्दी लाओ। और बंदर बिचारे यूं दर्शनों के लिए लालायित हुए, वे एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक चढ़ा हुआ है, यूं देखें कैसी सीता जी है। अब वो बंदरों, इतना बंदरों का वो जाल छा गया, रास्ता ही न मिले, तब वहां पर लकड़ियां ले ले करके उन बंदरों को पीटने लगे, हटो इधर से रास्ता दो, तुम उधर खड़े हो जाओ, तुम उधर खड़े हो जाओ। ऐसे ऐसे लोग जो सिरों के ऊपर साफा बांधे हुए, बड़ी बड़ी उनके मूछें और बड़े बड़े डंडे उनके हाथ में, और बंदरों के ऊपर खूब डंडे बरसाने चालू कर दिए। वो बंदर बिचारे डंडे खा खा करके भी सीता के दर्शन के लालायित हों, ऐसे ही रीछ ऐसे ही बंदर। जब इनको बुरी तरह से मारपीट करके रास्ता किया जाने लगा, उस समय में राम जी को बहुत बुरा लगा। राम जी महाराज ने कहा क्या करते हो, ये वो बंदर हैं जिनके कारण से मैं आज रावण को मारा हूं, ये सीता के दर्शन के लिए आज डंडा खाएं, नहीं सीता जी को पालकी से उतारो, सीता जी को पालकी से उतार कर उसको पैदल ही आने दो, अपने घर में कोई इतना सम्मान थोड़ा ही होता है। अपने घर में तो जब स्त्रियां अपने घर में रहती हैं तो वो पर्दे में नहीं रहती हैं, एक तो अपने घरों में नहीं रहती, एक अपने प्राकार में प्रकोटे के अंदर रहती हैं, तब वो पर्दे में नहीं रहती हैं। स्त्री की शोभा तो उसका भूषण है, उसकी लज्जा है, उसकी उसका विशेष चरित्र है, यही स्त्री की लज्जा, यही स्त्री का आवरण होता है। इसलिए ये पालकी हटाओ, ये आवरण हटाओ। देखो कोई बड़ा भारी संकट आया हुआ हो और या कोई युद्ध का अवसर हो या कोई स्वयंवर का अवसर हो या कोई यज्ञ का अवसर हो या कोई विवाह का अवसर हो, उस समय में स्त्रियां यदि दिखाई देती हैं उसमें कोई दोष नहीं होता है। इस समय में हम लोग बड़ी विपत्ति में फंसे हुए हैं, सीता की यदि कोई सब लोग दर्शन करेंगे तो इसमें कोई संकोच की बात नहीं है। ये पैदल पैदल आए और आप ये जितने बंदर हैं सब सीता को देखते रहे, मेरे पास पैदल पैदल ही उसको उपस्थित किया जाए। राम जी महाराज ने ऐसा ही आदेश दिया, विभीषण जी ने ऐसा ही किया। अब देखो राम जी तो यूं खड़े आदेश दे रहे हैं, पास में लक्ष्मण जी, सुग्रीव, हनुमान, ये सब आपस में एक दूसरे को देखते हैं। ये कहते हैं क्या बात है, राम जी के स्वरों में प्रेम नहीं है, राम जी के स्वरों में थोड़ी डांट फटकार दिख रही है, राम जी की आकृति पर तेज दिखाई देता है, सौम्य भाव नहीं, सीता से मिलने की इच्छा से जो प्रेम होना चाहिए वो प्रेम नहीं दिखता है। अप्रीति में वो सीतायाम, सीता में प्रेम नहीं है क्या, क्या बात हो गई, सीता के लिए तो सब कुछ किया फिर भी सीता से प्रेम की बात न करके थोड़ी कठोर बात बोलते हैं। इनके नेत्र, इनके इशारे, ये सब ऐसा ही बताते हैं कि शायद इनके हृदय से प्रेम समाप्त हो गया है। इधर सीता इतने सारे बंदर, रींच, राक्षस, उन सब के बीच में पैदल आ रही है तो इतनी लज्जा हो रही है सीता को कि सीता वहां एक एक पैर को रखती है तो बड़ी चुन चुन करके धीरे धीरे रखती है और वो सोचती है कि मैं अपने में ही समा जाऊं, अपने में ही समा जाऊं, ऐसे सीता को लज्जा का अनुभव हो रहा है। विभीषण जी आगे आगे चल रहे हैं और पीछे पीछे ये सीता जी चल रही हैं और जो ही अपने पति के पास में पहुंची हैं, बड़े स्नेह से और बड़े हर्ष के साथ, बड़े आश्चर्य के साथ उन्होंने अपने प्राणनाथ के मुख के दर्शन किए, दर्शन करके अपने प्राणनाथ को प्रणाम किया। परंतु सीता जी ने देखा, ऐसा दर्शन तो मैंने उपेक्षा का दर्शन पहले भी नहीं देखा था। अथ समपनुदन मन क्लमम सा सुचिरम अदृष्टम उद्वीक्ष वै प्रियस्य, अपने प्रीतम का इस प्रकार से लंबे समय के बाद दर्शन करने पर भी चेहरे पर कोई प्रेम का भाव नहीं देखा तो मन में थोड़ी शंका हो गई, क्या बात है। वो राम जी के पास आकर खड़ी हुई जैसे पत्नी पति के पास खड़ी होती है। राम जी महाराज उस समय में सीता को कहने लगे, देखो सीते, इन बंदरों की सहायता से मैंने लंका के ऊपर विजय प्राप्त की है, ये मैंने अपने पौरुष को दिखा करके विजय प्राप्त की है, आज मेरे क्रोध का अंत हो गया, क्योंकि जिस शत्रु ने मेरा अपमान किया था वो मेरा अपमान और मेरा शत्रु ये दोनों ही आज नष्ट हो गए हैं, आज मेरा पौरुष, मेरा परिश्रम सफल हुआ है, आज मैं अपनी प्रतिज्ञा को पूर्ण कर चुका हूं, आज मैं अपने आप में इस बात से संतुष्ट हूं कि जो बात मेरे मुंह से निकली वो बात पूरी हुई, जो देवताओं के लिए दुष्कर था वो कार्य आज मैं राम ने किया, मैंने मनुष्य ने किया, चंचल चित्त वाले राजा रावण के द्वारा आज लंका सुनी हो चुकी है, मेरा अपमान समाप्त हो गया, मेरी कुल की मर्यादा थी वो मर्यादा सुरक्षित रही, समुद्र का उल्लंघन करना, हनुमान के द्वारा समुद्र का लंघन करना और हनुमान के द्वारा लंका का मर्दन करना, ये सब काम आज हमारा सफल हो गया। युद्ध के अंदर सुग्रीव की सहायता लेकर मैंने इस राक्षस समुदाय को मारा, ये काम भी मेरा सफल हो गया, सेना सहित सुग्रीव ने हमारा पूर्ण सहयोग किया, विभीषण के सहयोग को हम किसी प्रकार भुला नहीं सकते हैं, देखो इस विभीषण ने इसी लंका के अंदर, इसी लंका के अपने गुणहीन बड़े भाई का त्याग कर जो मेरी शरण में आया, ऐसे विभीषण को कैसे भूल सकता हूं। सीता जी ने देखा कि इन सब बातों में मेरा तो अनुराग का एक शब्द नहीं निकला, और राम जी थोड़े कठोर वाणी में बोल रहे हैं, कहना तो ये चाहिए था कि प्रिय तुम्हारा सब कष्ट दूर हो गया ना, प्रिय तुम्हारे पास आने में मुझे बहुत कठिनाई का सामना करना पड़ा, प्रिय मेरे बिना तुम्हें बहुत कष्ट हुआ, देखो प्रिय इन सब की सहायता से आज तुम्हारा और हमारा मिलना हुआ, ये कोई बात नहीं बोली। वो राम जी महाराज के सामने देखने लगी। वाल्मीकि जी महाराज कहते हैं कि राम का हृदय उसमें बड़ा कठोर था, राम जी महाराज की आंख एकदम कठोरता से चमक रही थी, सब बंदरों को देख रहे थे, सब राक्षसों को देख रहे थे, कभी ऊंचा देखते थे कभी पृथ्वी पर देखते हैं, और फिर बड़ी कठोर वाणी में उन्होंने सीता को कहा, सुनो सीते, एक मनुष्य को जो अपनी प्रतिज्ञा का स्वरूप पालना था वो पूरा कर दिया, तत्कृतम रावणम हत्वा मयेदम मानकांक्षिणा, मैंने आज